भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 10 सालों से अटके जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल को भारत के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से पारित करा लिया। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब। हर्षवर्धन सर, इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्या ये बिल एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा भारत के आर्थिक विकास में, और क्या ये महंगाई पर भी रोक लगा पाएगा?
देखिए, आपने दो सवाल एक साथ पूछ लिए और दोनों में बड़ा कठिन सा रिश्ता है, तो इसलिए पहले हिस्से का जवाब देता हूँ कि क्या ये देश की, भारत की आर्थिक तरक्की के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दरअसल अगर इस लिहाज से देखें तो अभी जो पिछले हम 1991 के बाद के भारत की जिसकी बात करते हैं, जो ग्लोबलाइज इकोनॉमी वाला भारत है, तो उसमें सुधार के लिहाज से हमने जो ढेर सारे सुधार किए, उसमें सबसे बड़ा जो सुधार होना था वो टैक्स के मुद्दे पर होना था, क्योंकि बार बार ये जितने भी देसी कंपनियों के साथ भी और जो विदेश की कंपनियों के साथ भी भारत सरकार के अलग अलग जो विवाद चल रहे हैं वो टैक्स से जुड़े ही मुद्दे पर होते हैं। दूसरी एक बड़ी कठिनाई थी कि आप कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर है, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर है, सर्विस लेवल पर है, या कहें कि जितने भी उद्योग से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें आपने तेजी लाने के लिए सुधार किए, लेकिन सरकार उनसे किस तरह से कर वसूलेगी वो ढांचा अभी तक भारत में स्पष्ट नहीं हो सका था। और उस लिहाज से अगर देखें तो जीएसटी का आना, हालांकि अभी उसके आने में बहुत सी प्रक्रिया बाकी है, लेकिन चूंकि राज्यसभा से ये पास हो गया और लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है, अब सिर्फ इसे जो संशोधन है उसको एक बार रेटिफाई करना है लोकसभा से, तो माना जा रहा है कि ये कम से कम संसद से तो पास हो ही गया है। उस लिहाज से देखें तो टैक्स की प्रक्रिया को इतना आसान, यानी सीधे सीधे किसी को भी पता होगा कि वो सामान कोई खरीद रहा है और कहां पे खरीदा, कहां पे बेचा, उस लिहाज से कोई भी उसके टैक्स का कैलकुलेशन कर सकेगा। अभी भारत में ये मजाक के तौर पर चलता था कि अगर आप कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं तो अंत में होता ये था कि टैक्स सब कुछ लेके चला जाता है, लेकिन अब एक जीएसटी होगा जिसमें माना जा रहा है कि 18% का रेट होगा, हालांकि अभी वो तय नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल तय करेगी, लेकिन एक कहा जा सकता है कि टैक्स सुधार कंपनियों के काम और सरकार और जनता के बीच, यानी जो सरकार टैक्स वसूलेगी, कंपनी जो खरीद बिक्री का काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी या सर्विस देगी, और कंज्यूमर जो खरीदेगा उसको साफ साफ पता होगा कि कितना ट्रांसपेरेंसी से टैक्स लिया गया, और ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कहा जा सकता है बड़े आर्थिक संदर्भ में।
सर, बहुत छोटी सी बात है, इससे अल्कोहल को और पेट्रोलियम पदार्थों को अलग रखा गया है, तो इससे महंगाई रोकने वाला जो मेरा सवाल था वो कहीं ना कहीं, जब तक पेट्रोलियम के दाम नहीं कंट्रोल होंगे तब तक महंगाई बढ़ती ही रहेगी।
दरअसल हाँ, ये सवाल सबको बार बार ध्यान में आता है कि क्या सारी की सारी महंगाई भारत में सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से है? तो चूंकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है और हमारी डिपेंडेंसी अभी भी 70% से ज्यादा आयातित पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर है, इसलिए हमें बार बार लगता है कि शायद इस वजह से ही सिर्फ भारत में महंगाई बढ़ती है। लेकिन अगर हम आज के संदर्भों में देखें और कम से कम पिछले 2 साल से जो इंटरनेशनल मार्केट में साइकिल चल रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उसके लिहाज से देखें तो दरअसल भारत में महंगाई घटाने का एक बड़ा जरिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत कम हुई। जहां तक रही बात शराब की, तो शराब और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन दोनों से देश की, भारत की ज्यादातर राज्य सरकारों को बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का आता है, और जब जो बड़ा डेडलॉक था वो दो तीन जो बड़े मुद्दे थे, उसमें से एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि अगर हमें राज्य चलाने के लिए जहां से सबसे ज्यादा हमारा राजस्व आता है, रेवेन्यू आता है, रकम आती है, उस पर अगर केंद्र सरकार की जो जीएसटी काउंसिल होगी, और जो कि शुरू में अधिकार भी उतने नहीं थे, अभी तो राज्यों का अधिकार बढ़ गए हैं, तो राज्य के हित मारे जाएंगे। और मुझे लगता है कि महंगाई के संदर्भ में इसको इस तरह से देखना चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल की जो भी रेट होगी, जो भी एक तरह से कहें कि काउंसिल तय करेगी और स्टेट की सहमत से जो टैक्स लगने वाला है जीएसटी का इंटीग्रेटेड या फिर स्टेट और सेंटर का, उससे महंगाई पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह एक रिव्यू की स्थिति है, रिव्यू की व्यवस्था उसमें की गई है, और ये तय किया गया है कि उसका सीधा असर उस तरफ में पड़ेगा। जहां तक महंगाई बढ़ने की बात है तो मुझे जो लगता है अभी के संदर्भ में, अब आगे अगर वो स्थितियां दूसरी होंगी तो शायद महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, अभी के संदर्भ में भारत में जो टैक्स की व्यवस्था थी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी इंडस्ट्री है उसपे, उस लिहाज से मैन्युफैक्चर्ड किसी भी गुड्स का 3% से लेकर 16% की कमी आएगी जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। मुश्किल कहाँ होगी, सर्विस में मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि सर्विस में पहले ही सरकार ने 12% से उसको 15% कर दिया था, और अब वो अगर ये जीएसटी के रेट के साथ वो तालमेल बिठाते हैं तो 18% के आसपास होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सर्विसेज थोड़ी सी महंगी होंगी, लेकिन चूंकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बहुत सस्ते होंगे तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत असर तुरंत दिखना शुरू हो कि महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई पर इससे बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि 0.5% या 0.25% का फर्क पड़े कुल महंगाई दर पर, लेकिन ओवरऑल महंगाई पर इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला मेरे विचार से।
सर, इस सब के बीच में एक राजनीतिक सवाल यह है कि इस बिल पर 203 के मुकाबले 0, यानी 203 लोग सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया, क्या भारत की या मोदी सरकार अब फ्लोर मैनेज करना, संसद को मैनेज करना सीख गई है, ऐसा दिखाई देता है?
देखिए, जो अभी आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरह से देखें तो भारत के संदर्भ में शायद ये ऐसे गिने चुने मौके होंगे जब संसदीय व्यवस्था में सभी दल किसी एक मुद्दे पर इतना एकमत हुए हों, और वो भी एकमत होने की वजह अगर कोई आर्थिक कानून है तो मुझे लगता है कि जो 1991 से भारतीय राजनीतिक दल कहें कि उनका जो माइंडसेट था, जिस पर वो लगातार विरोध था, FDI को लेकर, उदारीकरण को लेकर, आर्थिक सुधारों को लेकर जिस तरह से वो दौड़ते थे, अब वो मुझे लगता है कि एक बड़ी समझ विकसित हुई है, और इस समझ को इस तरह से भी समझा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं वो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का इसी कानून का इस लिहाज से विरोध किया था जो अभी जयललिता कर रही है, और जिसकी वजह से उन्होंने वॉकआउट कर दिया उनके पार्टी के सांसदों ने। अब लेकिन स्थिति क्या है कि केरल में जो कम्युनिस्ट सरकार, वामपंथी सरकार चुनकर आई है, वो भी इस बिल के पूरी तरह से समर्थन में है, और मुझे लगता है कि शायद आर्थिक सुधारों के मामले में भारतीय राजनीतिक पार्टियों का ये जो परिपक्व व्यवहार है ये एक बड़ी चीज है। दूसरी एक बड़ी चीज जो है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में वो हैं, और अब उसे कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने स्वीकार किया है। लंबे समय तक ये स्थिति बनती रही कि वो बार बार ये कहते रहे कि ये जुमलों की सरकार है, रेटोरिक्स बोल बोल कर आ गए, और नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, लेकिन इसमें सरकार ने इस मानसून सत्र के ठीक पहले जो बदलाव किया मंत्रिमंडल में, और उसमें जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अनंत कुमार को लेकर आए, जो माने जाते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छे निगोशिएटर हैं, और खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली बार बार जाकर सीताराम येचुरी जो लेफ्ट के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद से, आनंद शर्मा से, इन लोगों से जिस तरह से बार बार बात की, तो वो दिखाता है कि सरकार को भी ये समझ में आ गया है कि आप लंबे समय तक सिर्फ इसलिए नहीं किसी चीज पर अड़े रह सकते कि आपका लोकसभा में बहुमत है। और मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ये GST का कानून कई नए तरह के प्रिंट छोड़कर जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो तरक्की को बार बार लेकर कहा जाता है कि बाधा हो रही है, तो अब किसी बैरियर की बात न करके मोदी सरकार तरक्की का वो जो ड्रीम एक डिजिट 10 डिजिट की ग्रोथ वाली बात है तो उस तरफ कहीं जाती हुई दिखेगी।
हर्षवर्धन जी, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।